जबरदस्त पिटाई। आस्था की बात सुनकर अरमान ने उसे कुछ नहीं कहा। वैसे भी आस्था को चोट लगी थी, तो वो खुद चाहता था कि आज आस्था आराम करे। साथ ही साथ उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो इस लड़की के साथ में इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकता है। अब आगे, अब अरमान ने आस्था को थोड़ी अकड़ दिखाते हुए कहा, ठीक है जाओ, लेकिन इस बार तुम मेरी कार से जाओगी, और हाँ, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अपने साथ लेकर जाना। इस पर आस्था ने मुस्कुराकर हुए जवाब दिया, डोंट वरी मिस्टर सिंघानिया, मुझे सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझ पर हमला करने वालों को अब तक इस बात के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि आस्था अरमान सिंघानिया को मारना या उस पर हमला करना खुद मुंह के बल गिरने जैसा है। ये कहकर आस्था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां से बाहर निकल गई। वहीं संजना आस्था को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसका खून पी जाएगी। उस समय वो अपनी उंगलियां मरोड़ती रह गई थी। वाकई उसने आस्था का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। क्या वाकई ये वही आस्था थी जो गांव में एक हल्की सी बिल्ली को देखकर भी डर जाया करती थी, और आज ये अकेले इतने बड़े बड़े गुंडे मवालियों से भिड़ गई? ये बात उसके लिए वाकई काफ़ी स्ट्रेंज थी। उसने अपने दांत पीस लिए थे और घूर कर आस्था को जाते हुए देखा, जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगी। दूसरी ओर आस्था इस वक्त घर नहीं बल्कि सीधा नाइट क्लब में चली गई थी। हालांकि अभी दिन का समय था, नाइट क्लब में जाकर उसने जैसे तैसे अलग कपड़े पहन लिए थे और खुद को पूरी तरह शांत करने लगी थी। उसने वहां की एक लड़की को अच्छी खासी मोटी रकम देकर कहा था कि आज उसकी जगह वो वहां काम करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था को याद था आहान ने राजवीर जिंदल की इन्फॉर्मेशन देते वक्त सबको बताया था कि ब्लैक डेविल का एक आदमी अक्सर नाइट क्लब में आता जाता रहता है। तो आस्था के दिमाग में ये आइडिया आया कि वो अपने हिसाब से उस आदमी की इन्फॉर्मेशन निकालेंगी। उसने ये आइडिया किसी के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी उसे ये काम करने नहीं देगा। इसीलिए आस्था के पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे उसे अब अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े, वो हर हाल में राजवीर जिंदल तक पहुँच कर रहेंगी और अपने पति की यादें वापस लौटा कर रहेंगी, क्योंकि बिना याददाश्त के अरमान कितना अधूरापन महसूस करता है, ये बात आस्था से छुपी हुई नहीं थी। भला वो उसका दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? फिलहाल आस्था ने नाइट क्लब में जिस लड़की को छुट्टी लेने को कहा था, उसकी जगह वो खुद तैयार होकर अपॉइंट हो गई थी, और वो सुबह से लेकर अब रात होने का इंतजार करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर सभी लोग लगातार ब्लैक डेविल के घर पर नजर रखे हुए थे, लेकिन ना तो राजवीर और ना तो उसका कोई आदमी अब तक बाहर आया था। दोपहर बीत चुकी थी, लेकिन अब तक कोई भी बाहर नहीं आया था। सभी को हैरानी हो रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। आस्था भी बेसब्री से ब्लैक डेविल के उस आदमी का नाइट क्लब आने का इंतजार कर रही थी। ठीक 6 बजे एक सफ़ेद रंग की कार डाक विला से बाहर निकली। सबने कार को अलग अलग तरीके से उसे फॉलो करना शुरू कर दिया था। कार सीधा नाइट क्लब के बाहर आकर रुकती है। उसमें वही आदमी था जो अपनी आदत से मजबूर आज भी नाइट क्लब में ड्रिंक करने आया था। आस्था भी उसी का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि अगर रॉकी हर रोज यहाँ आता है तो हर कोई उसे जानता होगा, इसीलिए वो बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रही थी। रॉकी सम्राट और राजवीर की हरकतों से तंग आकर अक्सर कुछ देर के लिए बाहर क्लब में ड्रिंक करने आता था। थोड़ी देर बाद रॉकी क्लब में एंटर करता है और सीधा जाकर अपनी रिजर्व टेबल पर बैठ जाता है। तब तक जल्दी ही कुछ वेटर्स उसके आसपास जमा हो जाते हैं और उसके टेबल पर ड्रिंक वगैरह रखने लगते हैं, और तब मैनेजर ने बाकी वेटर्स को ऑर्डर दिया, देखो रॉकी सर आ गए हैं, फटाफट से उनके सामने उनकी फेवरेट ब्रांड की ड्रिंक रखो। आस्था उस मैनेजर के मुँह से रॉकी का नाम सुनकर चौंक गई और वो रॉकी को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन रॉकी को तो वहाँ एकदम VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था, जिस वजह से आस्था रॉकी को वहाँ पर ठीक से नहीं देख पा रही थी। लेकिन तभी एक लड़की ने आस्था को रॉकी की टेबल पर ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा, जिसे सुनकर आस्था कुछ सेकंड हिचकिचाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर एक ज़बरदस्त उथल पुथल मची हुई है जिसे रोका नहीं जा सकता। आस्था ने अपना मन बना लिया था, अगर उसके पति को ठीक करने का रास्ता इन्हीं सबसे होकर गुजरता है तो वो ये काम ज़रूर करेगी। इसलिए देर न करते हुए वो रॉकी के सामने ड्रिंक लेकर खड़ी हो गई। लेकिन तभी अचानक आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, साथ ही साथ अबीर और अविदाश, जो अलग अलग तरीके से वहां पहुंच चुके थे, जैसे ही उन्होंने आस्था को रॉकी की टेबल के पास खड़े हुए देखा तो उन लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उनके चेहरे गुस्से से झुलसने लगे। जाहिर था आस्था को वहां देखना उनके लिए नागवार गुजरा था। वहीं अबीर तो गुस्से में अपनी हाथ की मुठ्ठी कसकर बंद कर चुका था और वो मन ही मन झल्ला रहा था, अगर इसने मेरी बटरफ्लाई को गंदी नजरों से देखा तो मैं यहीं के यहीं इसे जिंदा गाड़ दूंगा। अविनाश की भी कुछ ऐसी ही हालात थी। आस्था को वहां देखकर उसका मन अशांत हो गया था। वहीं ध्रुव और आहान तो इरिटेट होते हुए बोले, आस्था भाभी को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, उन्हें कम से कम थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, उन्हें क्या जरूरत बिना किसी को बताए इस तरह यहां आने की। लेकिन सुमित और आकाश की आंखें शांत थी, मानो जैसे उन्हें आस्था से यही उम्मीद थी कि वो अपने पति के लिए ऐसा ही कुछ कर गुजरेगी। वहीं रॉकी ने जैसे ही अचानक अपनी आंखों के सामने आस्था को देखा तो उसके हाथ से उसकी ड्रिंक का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया और वो बार बार अपनी आंखें मसल मसल कर आस्था को गौर देखने लगा। आस्था की तराश वो ऑस्ट्रेलिया से ही कर रहा था और अब जब आस्था खुद ब खुद उसके सामने आ गई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी मनमांगी मुराद पूरी कर दी हो। रॉकी ने आस्था को इस तरह से देखा जैसे वो किसी खजाने को देख रहा हो। उसने आव देखा न ताव और फटाक से आस्था का हाथ पकड़ लिया। रॉकी की इस हरकत से आस्था एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और मन ही मन खुद से बुदबुदाई, ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? मैं तो इससे पहली बार मिल रही हूँ, क्या ये मुझे पहचानता है? उस वक्त आस्था का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। आस्था ने सोचा, अगर वो पकड़ी गई है तो उसे अब इस रॉकी को यहीं दबोच लेना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो रॉकी को मारती या उस पर हमला करती, उससे पहले ही रॉकी ने तुरंत अपने बॉस को फोन मिला दिया और आस्था की तरफ देखते हुए एक्साइटेड होकर बोला, बॉस आपका काम हो गया है, वो लड़की मिल गई है, मैंने उसे ढूंढ लिया है बॉस, और अब वो मेरे सामने खड़ी है। रॉकी अपनी खुशी को कम नहीं कर पा रहा था, वो पूरी तरह से भावनाओं में बहकर आस्था के सामने ही ब्लैक डेविल यानी सम्राट को कॉल कर बैठा था। जाहिर था आस्था रॉकी की इस हरकत पर पूरी तरह भौचक्की रह गई थी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। उसने अचानक अपने मन में सोचा, आखिर ये ब्लैक डेविल मुझे क्यों ढूंढ रहा है? क्या वो मुझे जानता है? क्या वो जानता है मैं अरमान सिंघानिया की बीवी हूँ? आस्था ने रॉकी की बात बीच में काट दी और अपना हाथ रॉकी से छुड़ाकर जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली, कौन हो तुम और तुमने इस तरह से मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है?
तब रॉकी ने उसे हैरानी से देखते हुए एकदम पूछा, तुम तो वही लड़की हो ना जो कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में थी? तुम जानती नहीं हो, जब से मेरे बॉस ने तुम्हें देखा है वो पूरी तरह से पागल हो उठे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ एक मामूली वेटर्स की जॉब कर रही हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे साथ चलो, मेरा बॉस तुम्हें इतनी धन दौलत देगा, तुम पर पैसों की इतनी बरसात कर देगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आस्था ने जैसे ही रॉकी के मुँह से ये शब्द सुने तो वो थोड़ा हैरान रह गई। उसका मुँह करेले की तरह कड़वा हो गया। इससे पहले वो रॉकी से कुछ और पूछ पाती, उससे पहले अचानक अबीर ने वहां आकर खींच कर एक लात रॉकी को दे मारी, क्योंकि रॉकी की हरकत ने अबीर के गुस्से को और भड़काने का काम किया था। अब अबीर को रॉकी पर हमला करते हुए देखकर बाकी सब भी खुद को रोक नहीं पाए। उन लोगों ने अपने फेस कवर करके रखे हुए थे ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना ले, इसीलिए वो सभी फटाफट से वहां जाकर धमाकेदार तरीके से रॉकी की एक साथ धुलाई करनी शुरू कर देते हैं। रॉकी वहां का काफी बड़ा कस्टमर था, अब देखते ही देखते पूरे क्लब में भगदड़ मच चुकी थी। तब तक मौका पाकर ध्रुव आस्था के पास आया और उसे अपने साथ लेकर बाहर आ गया, और जब रॉकी की हालत बद से बदतर हो गई तब उसे छोड़कर बाकी सब बिना किसी की नज़र में आए वहां से बाहर निकल गए थे। अब अबीर ने अपना कोट उतारकर आस्था को पहना दिया। थोड़ी देर बाद अब सब एक जगह सुनसान रास्ते पर कार रोक चुके थे और सब आस्था को नाराजगी से घूर रहे थे। वहीं अबीर ने कुछ सेकंड तक आस्था को गौर से देखा, फिर गंभीर आवाज में बोला, ये क्या हरकत थी? तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी जान जोखिम में डालने की? तुम जानती हो वो इंसान कितना खतरनाक हो सकता था? वहीं आहान की भी आईब्रो हल्की सी तन गई और उसने भी आस्था पर अपनी नाराजगी जताई। भाभी, आपको हम पर यकीन करना चाहिए था, आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हैं? अगर आपको आज कुछ हो जाता तो हम अरमान भाई को क्या जवाब देते? आपने कभी इस बारे में सोचा है? अविनाश भी आस्था को डांटते हुए बोला, गोरी, तुम्हें इस तरह का कोई एक्शन लेने से पहले हमसे सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था। आस्था की आंखें थोड़ी डगमगाने लगी। उसने एक उलझी हुई नजरों से सबको देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मन की बात कहना चाह रही हो, लेकिन तब तक अबीर के दिल में नाराजगी अपने चरम पर जा चुकी थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए आस्था को तीखी नजरों से घूरते हुए कहा, बटरफ्लाई, अगर तुमने दोबारा ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबीर की बातों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। इस पर आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, जैसे वो अब कुछ और नहीं सुनना चाहती। वो अपना आपा खो बैठी और हल्की नाराजगी से चिल्लाई, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम हाथ पर हाथ बांध कर बैठे रहें? हाँ, हम अपने पति को इस तरह से बेचैन और दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकते। आपको नहीं पता कि उनके दिल का हाल कैसा है और उन पर क्या बीत रही है? अब एक एक पल हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। ऊपर से प्रोफेसर साहब को भी अभी तक ठीक से होश नहीं आया है, कहीं से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हम किस तरह से एंटीडोट लेकर आए, और एंटीडोट लाने का रास्ता सिर्फ डाकविला से होकर जाता है। हमें कुछ ना कुछ करके डाकविला जाना था जिससे हम वो एंटीडोट लेकर आ सकें, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। ये सब कहते हुए आस्था की आवाज़ में गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलक रहा था। आस्था ने फिर गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी, हम कुछ नहीं जानते, हम बस जल्द से जल्द अपने पति को ठीक करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी उनके बिना पूरी तरह अधूरी है। ये बोलते हुए आस्था का गला रुंध गया था।
आस्था को टूटा हुआ देखकर सभी को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। तभी अविनाश आगे बढ़कर आस्था को कंधों से संभाल कर बोला, शांत हो जाओ गोरी, शांत हो जाओ। तुम इतना परेशान क्यों होती हो? हम सब है ना, हम सब ठीक कर देंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना तुम्हारे साथ। और तुम देखना, बहुत जल्द हम ब्लैक डेविल के साथ साथ राजवीर जिंदल का भी अंत कर देंगे। ब्लैक डेविल का नाम सुनते ही आस्था के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी और वो अविनाश की बात बीच में काटते हुए बोली, भैया हमें उस क्लब में एक अजीब बात पता चली है। उस आदमी रॉकी ने हमें बताया कि ब्लैक डेविल हमें कई दिनों से ढूंढ रहा है। जब से उसने हमें ऑस्ट्रेलिया में देखा था तब से वो हमसे मिलना चाहता है। उसने अपने कुछ आदमी हमें ढूंढने के लिए लगा रखे हैं। आस्था के कहे गए शब्दों को सुनकर सब लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी उन्हें आस्था उलझन भरी आवाज में फिर से सुनाई दी, कहीं उन्हें हमारी आइडेंटिटी बारे में पता तो नहीं चल गया? आखिर वो ब्लैक डेविल हमें क्यों ढूंढ रहा है? आहन उलझन में था, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने कुछ झिझकते हुए आस्था से पूछा, क्या कहा भाभी आपने, उस ब्लैक डेविल ने आपको ऑस्ट्रेलिया में देखा था? जवाब में आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे देखकर आहन ने अपने सर पर हाथ मार लिया। अब आहन का ये बर्ताव देखकर सबको अजीब लगा, इसलिए सब उसे नासमझी से देखने लगे। लेकिन आस्था के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। वो आहन के पास आकर हैरान होते हुए बोली, क्या बात है भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं?